महाग्नि, महा अग्नि से एक बार बहुत भयावह अग्नि लगाई जाने वाली थी, उससे रक्षा किया भगवान ने। तो 100 भाई और 5 भाई, 105 के साथ में रहते थे। तो एक दिन इनको सभा में बुलाया धृतराष्ट्र ने और उनको कहा कि बेटा तुम लोग भी राजा के लड़के हो, अरे भी राजा के लड़के, इतना कंजस्टेड जीवन बिताना ठीक नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा राजभवन बनवाया है, सब प्रकार की फैसिलिटी से युक्त है, इंद्रप्रस्थ में, ये हस्तिनापुर से दूर, वर्तमान जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ था, बाद में महाराज युधिष्ठिर ने वहीं पर अपनी राजधानी बनाया था, और कौरवों की राजधानी कुरु वंश की ये हस्तिनापुर थी। तो ऐसी बात कहा धृतराष्ट्र ने कि महाराज युधिष्ठिर पर असर हो गया। ये सभा लगी हुई थी, सभा के बीच में धृतराष्ट्र ने प्रस्ताव दिया कि बेटा हम लोग राजा हैं, तुम लोग राजपुत्र हो, तो इतना संकीर्ण जीवन क्यों बिताओगे, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर भवन बना दिया गया है, वहां पांचों भाई आराम से रहो, अपने माँ के साथ भी रह सकते हो, अभी विवाह नहीं हुआ था पांडवों का, द्रौपदी से विवाह नहीं हुआ, तो अपने माँ के साथ वहीं अपने फैसिलिटी से पूरा आराम से रहो। और मन में ये इच्छा थी, इस प्रकार के पदार्थों से वो भवन बनाया गया था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक दिया सलाई की एक तिल्ली ही केवल प्रज्वलित करके और ऐसे दिखा दिया जाए तो पूरा भवन आग की लपेट में आ सकता था, ऐसा भयानक भवन बनाया गया था। और यही इच्छा थी, इसकी यही प्लान था कि पांडव अर्धरात्रि में कभी सोए रहेंगे तो उसी समय वो भवन जला दिया जाएगा, उसी में जलकर खाक हो जाएंगे। और प्रचार ये किया जाएगा कि कहीं बिजली शॉर्ट कर गई, क्या हो गया, कैसे आग लगी, कोई पता नहीं, इस तरह से इनका विचार था। इस बात का पता विदुर जी को लग गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो भवन बनवाया गया था, महामंत्री थे, तो उनको पता चल गया, परम बुद्धिमान थे कि क्यों भवन बनाया जा रहा है, खासकर पांडवों के लिए, और इतना शानदार दिखाया जा रहा है, उसमें जो पदार्थ लग रहे थे तो उस प्रज्वलनशील पदार्थ थे, जलने वाले, हाईली फ्लेमेबल बहुत, तो वो तो समझ गए विदुर जी, और कैसे कहें। सभा लगी हुई थी, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, सब लोग, धृतराष्ट्र ने कहा बेटा तुम लोग क्यों दुख भोग रहे हो, इतना संकीर्ण जीवन बिता रहे हो, तुम चलो चले जाओ, हमें भवन बनवा दिया हूं और बहुत अच्छा भवन है ना विदुर, ठीक से कंप्लीट हो गया ना भवन, कंस्ट्रक्शन का काम ठीक हो गया ना। विदुर जी कहते हैं हाँ बहुत अच्छा से बन गया। लेकिन विदुर जी और महाराज युधिष्ठिर ये दोनों इंग्लिश भाषा जानते थे और किसी को मालूम नहीं था, जो म्लेच्छ भाषा कहा गया है महाभारत में, तो म्लेच्छ भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, या संस्कृत के अलावा भारतीय भाषा के अलावा कोई विदेशी भाषा, जो भी म्लेच्छों की भाषा, युधिष्ठिर महाराज जानते थे और विदुर जी जानते थे, विदुर जी म्लेच्छ भाषा में बोले। अब उस म्लेच्छ भाषा का अर्थ चाहे आप लोग जो भी लगाइए, ये साफ लिखा हुआ है और ये दोनों ज्ञात थे। तो विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर जब जंगल में आग लगती है तो पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, लेकिन जो बिल के अंदर चूहा रहता है वो दूसरा नौका करके दूसरा बिल खोद करके भाग जाता है, वो जलता नहीं। यही बात उन्होंने कहा, वे समझ गए, वो समझ गए कि मतलब भवन में टनल बनाया गया है, सुरंग बनाया गया है और उससे हम लोग भाग सकते हैं, कभी अगर आग लगे तो हम लोग भाग सकते हैं। सर्वप्रथम जब गए भीमसेन के साथ चारों भाई और माता कुंती, तो लोग सोते थे, लेकिन निश्चिंत नहीं सोते थे। तो ये बात हो गई थी, विदुर जी ने बता दिया कि किसी दिन भी आग लग सकती है। तो वहां पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले उस सुरंग की खोज करने लगे, कहां से निकलता है और उसके भीतर प्रवेश करके वो कहां निकलता है, कितने कोस के बाद, इसको सब देख लिए, सब देख लिए। और ये दोनों युधिष्ठिर महाराज और भीम से बात कर रहे थे अपने भाइयों के सोने पर, आखिर किसी न किसी दिन तो आग लगेगी ही, वो लोग लगाएंगे ही, तो कहीं निद्रा के चपेट में हम लोग न जल जाए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने भीम से इनको कहा, जाड़े का महीना था, बिल्कुल ठंडी रात, भीमसेन इस घर को स्वयं ही जला करके हम लोग भाग जाए। तो उस दिन दैवयोग से क्या हुआ कि एक भीलनी जंगल की स्त्री अपने पांच पुत्रों के साथ बरामदे में सो रही थी। ये महाराज को पता नहीं था, दैव की इच्छा। भीमसेन आग लगाए और आग लगा करके इसके बाद चारों भाइयों को टांगे, मां को पीठ पर टांगे कुंती को, और चारों भाई को ऐसे वो पकड़ ले, दो भाई कंधे पर चढ़े युधिष्ठिर और अर्जुन कंधे पर, और नकुल और सहदेव को भुजा में ले लिए और मां को पीठ पर, और सुरंग के रास्ते से निकल जा। इसका वर्णन महाभारत में बहुत विस्तार से दिया गया। भीमसेन में इतना बल था कि वे स्वयं ही अपने मां को और चारों भाइयों को लेकर के चल दिए सुरंग से। इधर आग लगी और धू धू करके वो भवन जल जल गया, कुछ ही क्षण में समाप्त हो गया। तो तुरंत हस्तिनापुर में ये खबर गई कि पांचों पांडव जल गए। तो हस्तिनापुर से लोग आए, भीष्म पितामह कर्ण आदि जो लोग भी थे, वो सारे हुड दल के नेता थे सब, वो सब आए, बदमाश लोग आए। देखे तो कौरों भी झूठ मूठ रोने का नाटक करने लगे, हाय हाय हमारे भाई जल गए, ये जल गए, कुंती जल गए। और देखने लगे तो पांच लाश भी बरामद हुआ, झुलसा हुआ, और एक स्त्री की लाश थी। तो स्त्री की जो लाश थी, सबर की स्त्री को, उसको समझते थे कुंती है, और ये पांचों पांडव जल गए। तो कुछ लोग तो सचमुच के रो रहे थे, भीष्म पितामह आदि सचमुच रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो नाटक कर रहे थे। इसके बाद एक खबर द्वारका गई भगवान के पास, तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ रोने लगे कि हाय हमारे फुफेरे भाई सब मर गए, हमारी बुआ मर गई, ये हुआ। दोनों भाई विलाप करते हुए आए हस्तिनापुर। यह श्रीमद् भागवतम में भी है और महाभारत में तो है। लोग की रीति है, भगवान जानते थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, वे सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी लोग की रीति से वे रो रहे थे। कारण यह था कि चारों तरफ न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह फैल गई बात कि पांडव जल गए, मर गए, सारी दुनिया में हल्ला हो गया। और पांडव उस सुरंग के रास्ते से निकलकर जंगल में चले गए और सभी ब्राह्मण के रूप में हो गए, क्षत्रिय के रूप में नहीं, कहीं कोई पहचान न ले कि ये जीवित हैं। देखिए भगवान की कृपा, भगवान ने विदुर जी के द्वारा इनको बचा लिया। जंगल में रहते थे, सब लोग यही जानते थे कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी है। बेचारे किस दुख से जिंदगी गुजार रहे थे, वो अद्भुत बात है।